أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين أما بعد پیارے دوستو السلام علیکم آشا کرتا ہوں اور ایشور سے یہی پرارتھنا ہے کہ آپ اپنے جیون میں سکھی اور سوستھ ہوں اور ایشور کی انوکمپائیں آپ پر ہر سمے برستی رہیں۔ ہم اپنے آج کے پروگرام میں اپنی پچھلی بحث کو آگے بڑھائیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے اپنی پچھلی بحث میں پچھلے پروگرام میں جس بات کو آرمبھ کیا تھا وہ قرآت سے سمبندھت مسئلے تھے۔ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں اس سے سمبندھت کچھ مسئلوں کو آپ کے سامنے بیان کیا تھا اور کچھ اور مسئلے آپ کے سامنے ہم اسی قرآت سے سمبندھت اس پروگرام میں بیان کریں گے۔ اس کے بعد اگر ہمارے پاس سمے بچتا ہے تو ہم ذکر و رکوع اور سجدے کے متعلق بھی بات چیت کریں گے۔ تو قرآت سے سمبندھت جو ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے جیون میں نماز پڑھتا ہے اور کسی شبد کو وہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں لیکن واسطو میں وہ غلط ہوتا ہے۔ جیسے ایک مثال دوں تاکہ بات اسپشٹ ہو، جیسے کہ تشہد میں لفظ ہے عبدہ، جیسے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ شبد ہے۔ اب کوئی انسان عبدہ کے بجائے عبدہ پڑھنا شروع کر دے اور اس کو اس بات کا وشواس ہو کہ جو میں پڑھ رہا ہوں وہ صحیح پڑھ رہا ہوں، اسی پرکار وہ پڑھتا رہا ایک عرصے تک، کچھ سمے تک اسی پرکار پڑھتا رہا، کچھ سمے بعد اس کو پتہ چلا کہ جس شبد کو میں عبدہ پڑھتا ہوا آیا ہوں وہ عبدہ نہیں واسطو میں عبدہ ہے۔ تو اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ کیا اس کی نماز باطل ہے؟ جو اس نے نمازیں پچھلے سمے میں پڑھ لی ان کو دوبارہ پڑھنا ہوگا یا اس کی نماز صحیح ہوگی؟ تو یہاں پر ہمارے فقہا یہ کہتے ہیں کہ جس شبد کے بارے میں انسان نے یہ سمجھتے ہوئے پڑھا تھا کہ شبد صحیح ہے، بعد میں اس کو گیات ہوا، بعد میں جانکاری پراپت ہوئی کہ یہ شبد غلط تھا، تو اب اس کے بعد جو نمازیں پڑھنا ہے اس کو چاہیے کہ اس میں اپنے شبد کو صحیح کرے، یعنی اگر وہ عبدہ پڑھتا آیا ہے تو آگے کی نمازوں میں عبدہ پڑھے۔ لیکن وہ نمازیں جو اس نے پچھلے پڑھ لی ہیں ان کی اس کی وہ نمازیں صحیح ہوں گی، اس کے اوپر کوئی آپتی نہیں ہے، ان کو دوبارہ پڑھنے کی آوشیکتا نہیں ہے۔ یہ اس شبد کے بارے میں تھا جس کو ہم غلط سمجھتے تھے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک نمازی جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو پہلی دو رکعتوں میں اس کے لیے انیوار یہ ہے، آوشیک یہ ہے، واجب یہ ہے کہ سورہ الحمد پڑھے اور اس کے اترکت کوئی ایک سورہ پڑھے۔ لیکن دو استھان ایسے ہیں یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان پہلی دو رکعتوں میں بھی صرف اور صرف سورہ حمد پڑھ سکتا ہے، اس کو دوسرا سورہ پڑھنے کی آوشیکتا نہیں ہے بلکہ نہیں پڑھے گا۔ کب کب؟ پہلا استھان وہ ہے کہ جب انسان کے پاس سمے اتنا کم ہو کہ اگر وہ دوسرا سورہ پڑھے تو اس کی نماز یا قضا ہو جائے گی یا نماز کا کچھ حصہ سمے کے بعد نکل جائے گا، تو ایسے استھان پر نمازی کے لیے واجب یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف سورہ حمد پڑھے اور دوسرا سورہ نہ پڑھے۔ اور دوسرا استھان جب وہ صرف اور صرف سورہ حمد پڑھے گا اور دوسرا سورہ نہیں پڑھے گا وہ ہے وشتا کے وقت، مجبوری کے سمے، یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان مجبور ہوتا ہے کہ دوسرا سورہ نہ پڑھے، جیسے کہ اس کو پتہ ہے کہ اگر اس نے دوسرا سورہ پڑھا تو تب تک کوئی چور آ کے اس کا سامان اٹھا لے جائے گا یا کہیں ایسی جگہ پڑھا جہاں پر کوئی جانور اس کے اوپر حملہ کر دے گا، تو ایسے سمے پہ انسان صرف اور صرف پہلی دو رکعتوں میں بھی صرف اور صرف سورہ حمد پڑھے گا اور دوسرا سورہ نہیں پڑھے گا، اس کی نماز صحیح ہوگی اور نماز کو آگے بڑھا دے گا۔ اس کے بعد جو قرآت کے سمبندھت مسئلے ہو سکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان حمد کے بعد دوسرا سورہ شروع کرے اور اس دوسرے سورے کو چھوڑ کے دوسرا سورہ، یعنی حمد کے بعد ایک سورہ اس نے پڑھنا شروع کیا، اب وہ چاہتا ہے کہ اس سورہ کو چھوڑ کے کوئی دوسرا سورہ پڑھنے لگے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یعنی سورہ کا بدلنا نماز کے بیچ میں کیا صحیح ہے کیا نہیں؟ तो हमारे फुकहा ये कहते हैं कि अगर सूरह अलहम्द के बाद इंसान ने सूरह तौहीद यानी कुल हुवल्लाहु अहद या सूरह काफिरून शुरू कर दिया है तो इस सूरह को नहीं छोड़ सकता है। उसको अगर इसने ये सूरह शुरू कर दिया तो उसको सूरह को तमाम करना ज़रूरी है, वाजिब है। लेकिन अगर ये हो जाए कि वो सूरह उसको अगर सूरह हम्द या सूरह काफिरून पढ़ सूरह तौहीद या सूरह काफिरून पढ़ना शुरू किया और आगे उसको सूरह याद ही नहीं रह गया, अगर सूरह भूल जाए तब ऐसे स्थान पर वो सूरह को इन दोनों सूरों को छोड़ सकता है और छोड़ के दूसरे सूरह को पढ़ सकता है। लेकिन यही दो सूरह एक और भी ऐसा स्थान है जहाँ पर छोड़े जा सकते हैं, और वो स्थान कब है? वो स्थान है जुमे के दिन का। अगर जुमे के दिन इंसान नमाज जुमा पढ़ रहा है या जुहर की नमाज़ पढ़ रहा है और वो चाहता है कि सूरह जुमा या सूरह मुनाफिकून पढ़े, सूरह तौहीद या सूरह काफिरून शुरू कर दिया है, तो अगर ऐसा समय हो जाता है तो इंसान इन दोनों को सूरों को छोड़ के सूरह जुमा और सूरह मुनाफिकून को पढ़ सकता है। उसके अलावा यानी सूरह तौहीद और सूरह काफिरून के अलावा जो दूसरे सूरह हैं उनको छोड़ने के बारे में क्या मसले हैं? उसके अलावा अगर कोई और सूरह पढ़ रहा है, मान लीजिए सूरह इन्ना अनज़लना पढ़ रहा है या कोई और सूरह पढ़ रहा है, तो अगर इन सूरों को आधे सूरह तक नहीं पहुंचा है तो उनको छोड़ सकता है और उसके अलावा कोई दूसरा सूरह पढ़ सकता है। लेकिन अगर आधा सूरह पढ़ लिया है, आधे सूरह से आगे निकल चुका है, तो उसको नहीं छोड़ सकता है, बल्कि उसके लिए अनिवार्य हो गया कि इसी सूरह को समाप्ति तक पहुँचाए। सिर्फ़ और सिर्फ दो सूरतों में छोड़ सकता है, आधा सूरह ना पढ़ा हो या भूल गया हो। अगर भूल गया है या आधा सूरह नहीं पढ़ा है तो छोड़ सकता है, वरना उसके अतिरिक्त किसी भी सूरत में नहीं छोड़ सकता है। उसको उसी सूरह के साथ अपनी नमाज को समाप्त करना होगा और ये वाजिब है उसके ऊपर। यहाँ पर एक मसला पूछा जाता है क़िराअत से संबंधित, हमारे सामने इस प्रकार के मसले आते हैं कि तलफ़ुज़ के बारे में हमारे फुकहा क्या कहते हैं, ख़ास तौर से जब सूरह हम्द में वलद्दालीन या वलद्दालीन क्या पढ़ा जाए या ज़बान को कहाँ पर लगाया जाए। तो हमारे फुकहा ये कहते हैं कि क्या ज़बान को दाढ़ की तरफ लगाया जाए या ज़बान की नोक को लगाया जाए या ज़बान के कोने को लगाया जाए, कैसे लगाया जाए। तो हमारे फुकहा ये कहते हैं यहाँ पर ये मेयार नहीं है, ये मापदंड नहीं है, ये आधार नहीं कि आपकी ज़बान कहाँ पर लग रही है, बल्कि मापदंड और मेयार ये है कि आप ऐसे पढ़ें कि अहले ज़बान यानी अरब ज़बान ये कहें कि फ़लाँ शब्द अदा कर दिया गया है। अगर फ़लाँ शब्द अदा करने का कह दें अहले ज़बान या अरब भाषी लोग ये कह दें कि हाँ मतलब ज़ालिन में ज़ाद अदा किया गया है, नहीं अदा किया गया है, तो वो सही होगा। तलफ़ुज़ के लिए ज़बान को कहाँ पर ले जाना ये मापदंड और मेयार नहीं है। इसमें उसके बाद क़िराअत में जो अंतिम मसले जो कह सकते हैं हम यहाँ पर वो हो सकते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि ये तीसरी और चौथी रकत में मामूलन होता है, या अगर मगरिब की नमाज़ है तो तीसरी रकत में ऐसा होता है, अगर 4 रकत ही नमाज है तो तीसरी और चौथी रकत में ऐसा होता है कि तस्बीहात अरबा और अलहम्दों का अलग अलग होना, जा बजा होना, एक के स्थान पर दूसरे का पहुँच जाना, इसके बारे में क्या मसले हैं, हमारे फुकहा इसके बारे में क्या कहते हैं। अगर इंसान पहली 2 रकतों में है, यानी अगर जो है पहली 2 रकतों में अलहम्द और तस्बीहात अरबा जा बजा हो जाएं, यानी अगर इंसान पहली 2 रकतों में है और उसको इस ये लगे कि शुरू किया है पहली दूसरी रकत है नमाज है, उसको लगे शायद मैं तीसरी या चौथी रकत में हूँ, अलहम्द यहाँ पर तस्बीहात अरबा पढ़ जाए तो क्या करेगा? तो हमारे फुकहा ये कहते हैं कि अगर रुकू में पहुँचने से पहले इंसान को याद आ जाए कि ये हमारी पहली और दूसरी रकत ही नमाज है, तो उसको चाहिए कि वो रुकू में पहुंचने से पहले याद अगर खड़ा हो जाए, सीधा खड़ा हो जाए और उसके बाद अल्हम्दु पढ़े और दूसरा सूरा पढ़े, उसके बाद अपनी नमाज़ को आगे बढ़ाए। लेकिन अगर रुकू में पहुंच गया है तो रुकू में पहुंचने के बाद उसको जो है उसको पलटने का अख्तियार नहीं है, बल्कि उसी के साथ अपनी नमाज़ को आगे बढ़ाएगा और उसकी नमाज़ सही होगी। और दूसरी अब अंत की 2 नमाज़ों में, अंत की 2 रकतों में जहाँ पर ये होता है कि या तस्बीहात अरबा पढ़ना है या अलहम्द पढ़ना है, कोई एक पढ़ना है, अगर यहाँ पर जा बजा हो जाए तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर हमारे फुकहा कहते हैं कि अगर इंसान चाहता था कि सूरह अलहम्द पढ़े, यानी उसने तीसरी रकात थी, उसने सोचा था कि हम तीसरी रकात में सूरह अलहम्द पढ़ेंगे या चौथी रकात में सूरह हम्द पढ़ेंगे, बेसाख्ता उसकी ज़बान से तस्बीहात अरबा निकल गई, यानी उसने तस्बीहात अरबा पढ़ना शुरू कर दिया, या पढ़ना तो तस्बीहात अरबा चाहता था और निकल गया उसके सूरह हम्द पढ़ना शुरू कर दिया, तो हमारे फुकहा यहाँ पर ये कहते हैं, अगर इंसान की आदत तस्बीहात अरबा या सूरह हंद पढ़ना रही हो और उसकी ज़बान से वही निकल गया हो तो वो सही होगा, यानी उसी को पढ़ के आगे बढ़ जाए, उसकी नमाज़ सही होगी। लेकिन अगर आदत नहीं थी, यानी वो पढ़ना चाहता था वाकई तस्बीहात अरबा ही पढ़ना चाहता था, उसके ज़बान से निकलना शुरू हो गया सूरह हंद, तो उसको चाहिए कि वो छोड़ दे और उसके छोड़ने के बाद दोबारा सूरह हंद या तस्बीहात अरबा को पढ़े। तो ये वो मसले थे जो क़िरात से संबंधित हैं। लेकिन क़िरात के इसी संबंध में कुछ अहकाम ऐसे हैं जो हमारे लिए मुस्तहब हैं, जिनको नमाज में अगर ध्यान रखा जाए तो सवाब नमाज का बढ़ जाता है। सबसे पहली चीज़, जब इंसान नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा होता है और पहली रकात में होता है, अगर जो सूरह हंद पढ़ना चाहता है तो उसके लिए मुस्तहब ये है कि सूरह हंद पढ़ने से पहले औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम कहे, ये उसके लिए कहना मुस्तहब है। और मुस्तहब है कि इंसान जब पहली और दूसरी रकात में हो तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम को बुलंद आवाज़ में पढ़े, चाहे वो नमाज जहरी हो चाहे इख़फ़ाती हो, यानी अगर जहर और असर की नमाज़ भी है तो उसके लिए मुस्तहब ये है कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम को बुलंद आवाज़ में पढ़े और तेज़ आवाज़ में पढ़े। और मुस्तहब ये है कि हम्द और सूरह को धीरे धीरे पढ़े, यानी जल्दबाज़ी में पढ़े, आराम आराम से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, इस प्रकार धीरे धीरे पढ़े। और ये भी मुस्तहब है कि जिस समय इंसान पढ़ रहा है तो उसको पता हो कि जो बात वो कह रहा है, जो सूरह वो पढ़ रहा है, उसका अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है। और एक और चीज़ जो मुस्तहब है, वो दोनों अवस्था में मुस्तहब, यानी अगर जमात से नमाज़ पढ़ रहा है तब भी ये मुस्तहब है, अगर फुरादा नमाज़ पढ़ रहा है, अकेला नमाज़ पढ़ रहा है तब भी ये मुस्तहब है। वो ये है कि जब इंसान सूरह हम्द को समाप्त करे, अगर जमात से नमाज़ हो रही है तब भी जब इमाम अपने सूरह हम्द को समाप्त कर ले तो कहे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और अगर फुरादा पढ़ रहा है तो जब उसका सूरह हम्द समाप्त हो जाए तो ये कहे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये वो चीज़ें थी जो मुस्तहब थी। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें मुस्तहब हैं, लेकिन हमने संक्षेप में इन चीज़ों को बयान किया है, जिसका नमाज में ध्यान रखा जाए तो बहुत अच्छा है और इससे नमाज का सवाब बढ़ जाता है। तो ये वो मसले थे जो क़िरात से संबंधित है। वो दूसरी चीज़ जो वाजिबात नमाज में से है और गैर रुकन है, वो है ज़िक्र। ज़िक्र से संबंधित कुछ विशेष प्रकार के मसले हैं जिनको हम यहाँ पर बयान नहीं करेंगे, बल्कि इस पूरे चैप्टर को, यानी ज़िक्र से संबंधित पूरे चैप्टर को हम अपने किसी और प्रोग्राम में बयान करेंगे। इसके बाद जो चीज़ आती है वाजिबात नमाज में से, उसे कहते हैं रुकू। रुकू वाजिबात नमाज में से है। पहली, बल्कि जिसे कहा जाए हर नमाज में, पहली दूसरी रकात में हम्द और सूरह के बाद और तीसरी और चौथी रकात में तस्बीहात अरबा के बाद नमाजी के लिए वाजिब ये है कि वो रुकू में जाए, यानी अपने शरीर को इतना झुकाए कि उसके हाथ घुटने तक पहुंच जाएं। यहाँ पर घुटने तक पहुंच जाने वाली जो बात हमने कही, यहाँ पर हमारे मुज्तहदीन के बारे में बहुत ज़्यादा मतभेद पाए जाते हैं, इसलिए आप अपने उस मुज्तहिद का फतवा अवश्य देखें जिसकी आप तकलीद करते हैं। यहाँ पर हम दो मुज्तहदीन के फतवे आपके सामने बयान कर रहे हैं। आयतुल्ला सिस्तानी यहाँ पर ये कहते हैं कि झुकना अनिवार्य है, लेकिन अपने हाथों को घुटने पर रखना अनिवार्य नहीं है, बल्कि अगर झुक जाए इस मात्रा में कि उसके हाथ घुटने तक पहुँच जाए, भले रखे या ना रखे, तो उसकी नमाज़ सही होगी। लेकिन आयतुल्ला खामनई यहाँ पर कहते हैं कि एहतियात वाजिब ये है कि इंसान झुकने के अतिरिक्त अपने हाथों को भी अपने घुटनों पर रखे। अब इसके बाद जो चीज़ें आती हैं वाजिबात रुकू, जब इंसान रुकू में पहुँच गया तो क्या करे। जब इंसान रुकू में पहुंच जाता है तो सबसे पहले उसके ऊपर वाजिब हो ये है कि रुकू में ज़िक्र पढ़े, जो ज़िक्र जो बताए गए हैं, जो हम मामूलन अपनी नमाज़ें पढ़ते हैं वो पढ़े, या उसके अलावा कोई और ज़िक्र पढ़े। और जिस समय इंसान रुकू में है उसका शरीर ठहरा हुआ हो, यानी हिल डुल ना रहा हो, अगर यूँ इंसान खड़ा था रुकू में गया तो यूँ बिल्कुल सीधा उसका बदन रुक गया, रुक जाए, हिल डुल ना रहा हो बदन। और उसके बाद जो वाजिबात है रुकू में से, जब इंसान यूँ रुकू में था उसके बाद यूँ खड़ा हो सीधा, और जिस समय खड़ा हो रहा है उस समय इस बात का ध्यान रखे जब खड़ा हो जाए तो उसका बदन ठहर जाए, यानी यूँ ना हो यूँ खड़ा हुआ सीधा रुकू सजदे में चला जाए, बल्कि नहीं, यूँ है इसके बाद यूँ सीधा खड़ा हो, खड़ा होने के बाद थोड़ी देर रुक जाए ताकि उसको इस बात का विश्वास हो जाए हाँ उसने अपना क़याम पूरा कर लिया है, रुकू के बाद जो क़याम था उसके बाद सजदे में जाए। तो रुकू से संबंधित कुछ मसले थे जिनको हमने आपके सामने संक्षेप में बयान किया है। यहाँ पर रुकू से संबंधित कुछ और मसले हैं जिसको हम अपने अगले किसी प्रोग्राम में बयान करेंगे। तब तक के लिए हमारी प्रतीक्षा कीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।